ಸಂಗೀತಂ ಜೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾಬದನ್ನಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ನೆ ಗೌರತ್ತಿಜೇ ನಮಃ. ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಕರ್ವೋಭಿನೇದೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನಸೋಸ್ಮಿ. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತಂ ನಯಮಾಮ ಚರಣಾಂತಿಕೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಯ ಅಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಸ್ಯ ಕಾಮಾದಿತರಂಗ ಮಧ್ಯೆ ಕೃಪಾಮಯಿಂ ತ್ವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ವಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾರವಿಂದ. ಸಬ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಲೇ ಆವತೋ ಸಬ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸ್ವರ್ಗ. सवेरे हमने रामचंद्र जी की कथाओं का की भूमिका हमने बतलाई. ये रामलीला का उद्देश्य क्या है, कुछ कुछ हमने कौशल्या जी के जीवन चरित्र पर और सब विषयों पर थोड़ा सा प्रकाश हमने डाला. रामचंद्र जी प्रकट होकर के बहुत प्रकार की लीलाएं की जिनमें सबसे पहले वाल्मीकि जी का चरित्र आता है कि गंगा के पास ही तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम था. पूर्व जन्म में एक ऋषि के लड़के थे, किंतु कुसंग में पड़ जाने से डकैत जैसे बन गए और लूटपाट करते, सबका लूट लेते, किसी को मार डालते. कहीं कहीं पता ऐसा मिलता है कि इतने लोगों को मारा जिनके यज्ञ पवित्र से कुआं भर गया, इतने लोगों को मारा. वाल्मीकि इन हिज पास्ट लाइफ, इन हिज फर्स्ट लाइफ ही वॉज ए ब्राह्मण बॉय, बट बाय द एसोसिएशन ऑफ बैड पर्सन ही बिकेम लाइक डकाइट एंड ही किल्ड सो मेनी ब्राह्मिन्स दैट बाय देयर सेक्रेट फेथ or some whole well was filled up. But by the association of Narad, he became a saint. वो नारद जी की कृपा से एक साधु बन गए। एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उनके शिष्य थे भरद्वाज। भरद्वाज का आश्रम प्रयाग में है, प्रयाग में है ना, प्रयाग में, वहीं पर बैठे थे। इतने में उन्होंने कहा जी चलो स्नान करने जाएं, और सर स्नान करने के लिए अपने शिष्य को लेकर के चले। उनका कमंडलू और उनका कपड़ा लेकर के शिष्य भरद्वाज जी चले। जब तरसा नदी के किनारे पर पहुंचे तो जब ही स्नान करने गए, देखा क्रांत पक्षी दो, एक जोड़े स्त्री और पुरुष एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे और बड़े प्रेम से आलाप कर रहे थे। इतने में एक बहेली आया और अपने तीर से उन जोड़ों में से एक पक्षी को उसने मारा, जो काम के द्वारा तृप्त नहीं हुए थे, अभी प्रेम आलाप कर रहे थे, और उसमें एक क्रौंच माने पुरुष बाण विद्ध होकर के रक्त निकलने लगा, वो जमीन पर गिर पड़ा और छटपट करने लगा। उस समय उनके मुख से श्लोक बद्ध उनकी भावना निकल पड़ी, पर बतला रहे हैं कि नारद जी उनके पास में आए थे। पहले नारद जी से वाल्मीकि से बातें हुई, नारद जी को उन्होंने पूजा किया, नारद जी उनके गुरु हैं, उनके देवलोक पर धारने के बाद ही में दो घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर आए, जो गंगा से दूर नहीं था, बहुत गंगा के निकट ही। तमसा के तट पर पहुंचकर उसके घाट को देखा, ये बालू है, कीचड़ नहीं है। पास में खड़े अपने भरद्वाज शिष्य से बतलाया, भरद्वाज यहाँ का घाट बड़ा ही सुंदर है, इसमें कीचड़ नहीं है, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। सत्पुरुषों का जैसा मन होता है ऐसे ही इस नदी का पानी न कीचड़ इत्यादि से घाट परम सुंदर है। तो हम लोग अब सत्पुरुष होने बनने जा रहे हैं, तो हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, और नहीं तो हम लोग सत्पुरुषों का नाम बिगाड़ देंगे, इसलिए ऐसा हमारा हृदय होना चाहिए। गुरु जी का हृदय, भक्तों का, संतों का हृदय अत्यंत निर्मल, नवनीत से भी अधिक कोमल होता है, और यदि हम ये छल छंद पालुसी राजनीति इत्यादि रही पैसे के प्रति मोह रहा तो ये सब दाग भर पड़े, तब हम लोग उसके अनुगत्य में नहीं रहेंगे। कलश रख दो और मेरा बलकल भी रख दो, मैं तमसा के उसी उत्तम घाट पर मैं स्नान करूंगा। वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम प्राण शिष्य, नियम प्राण में क्या, गुरु के अनुगत उनके आदेश में रहने वाले नियम पूर्वक सब साधन भजन करने वाले भरद्वाज अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को बलकल वस्त्र दे करके वहीं पर अपना सब रस या स्नान करने की व्यवस्था। यही भरद्वाज ऋषि ऐसे हैं, जब रामचंद्र जी ने भरत जी जब आए अपने लाखों सेना लेकर घोड़ों को और हाथियों को लेकर के चित्रकूट में जा रहे थे, इन्होंने कहा जैसे आज हमारे यहाँ आप आतिथ्य ग्रहण करें, आज सबकी मेरी तरफ से व्यवस्था हुई, नहीं आपके आश्रम में कुछ है नहीं और मेरी आतिथ्य ग्रहण करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो जब आप कह रहे हैं तब हम करेंगे, वैसे हमारे यहाँ ही आपका भी भोजन हो। उन्हें कहे नहीं, और उन्हें झट अपने जोग बल से दूध और दही राबड़ी खीर इत्यादि की बड़ी बड़ी पुष्करणियां तैयार कर दी और स्वादिष्ट मालपुआ पूरी की पर्वत उन्होंने बना दिए और उनकी सारी सेनाओं के रहने का संस्था एकदम सुंदर रूप में कर दी, जो कि राजभवन में भी संभव पर नहीं है। और उनको कहा कि आप लोग विश्राम कीजिए, यहां पर भोजन कीजिए, लंगर बनने लग गया और मिनटों में सारी व्यवस्था कर दी। वे अनुभव प्राप्त भगवत अनुभूति युक्त, जैसे वाल्मीकि जी अनुभूति युक्त थे, ऐसे ही जैसा गुरु ऐसा ही शिष्य भरद्वाज। राम से मिलने के लिए तो उस समय ऐसे इनकी बहुत महिमा है, वाल्मीकि जी की कहीं कैसी महिमा है ऐसे। इतने में पास में एक पेड़ की डाल पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो कभी दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे, बहुत मधुर मधुर। उसी समय पाप पूर्ण विचार वाले एक निषाद अपने धनुष बाण को लेकर के काला जीव जंतुओं का अकारण बैरी बिना कारण ही पशुओं की हत्या करने वाला वहां पर उपस्थित हुआ और देखते देखते अपने बाण से उनमें से एक को मार डाला। खून से लथपथ होकर के वो पृथ्वी में गिर पड़ा और फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा, एक एक बार तो मरेगा नहीं, आदमी का गला काट दिया जाए ना झट तो क्या होगा, फिर छट 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 करके उधर ये बकरे को लोग काटते हैं सुनते हैं जैसे वो छट छट करके इधर से उधर उछलने लगता है। हमने तो नहीं देखा, भगवान ने हमको ऐसा नहीं किया दिखाया कभी। कभी हमने मांस मछली अंडा फंडा गोश्त बीड़ी सिगरेट प्याज से हमको कभी संबंध ही नहीं रहा, नहीं जानते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, और भगवान न करें ये पूर्व जन्म से ही ऐसा है। उन पर पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भाज्या के साथ में विचरण करता था। उसका मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था, वो काम से मत वाला हो गया था। ऐसे पति से विजुक्त होकर के कौन सी बड़ी जोर से विलाप करने लगी। निषाद ने जिसे मार गिराया था उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देकर के धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आ गई, हाय हाय ये क्या कर डाला, और वो स्वभावतः करुणा का अनुभव करने लगे और करुणा से उनके अंदर से चीख निकली और वो चीख कैसे निकली, श्लोक युक्त जिसमें चार चरण के अनुष्टुप छंद निकला। अरे तू क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं निकला, निकला क्या, मां निषाद प्रतिष्ठान तो मांग महसाक्षती क्षमा जत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम, हाथ उठा करके आशय तू क्या कर डाला निषाद, तुम्हें कभी भी नित्य निरंतर शांति नहीं, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है, क्या नित्य निरंतर तुमको कभी शांति ना मिले। मान निषाद प्रतिष्ठा, कभी तुमको प्रतिष्ठा अर्थात शांति शाश्वत शांति ना मिले। शाश्वती समान वर्षों में कभी भी आजीवन न मिले, तुमने बिना कारण के ही ये काम्य मत वाला जो क्रौंच पक्षी हो रहा था और उस अवस्था में बिना किसी कारण के तुमने बध कर दिया। इसी प्रकार का एक और हुआ था, महाराज पांडु, पांडु भी इसी प्रकार से, उनका भी इसी प्रकार से साप और हुआ था, काम में मोहित होते हो रहे थे और उसी समय में किसी को उन्होंने मारा था, हिरण को मारा था, ऋषि हिरण बन, उसको पता नहीं था कौन है। बस तो इसी प्रकार से उनकी भी जीत, तुम अपनी स्त्री के साथ में रहेगा, यदि जाएगा स्त्री के पास में बस तुम भी उसी समय में मारा जाएगा। इसलिए ऐसे समय में ये सब देखना चाहिए, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, तन से मन से वचन से किसी को भी दुख मत दो, विशेष करके अपनी जीविका के लिए वैष्णवों के ऊपर अपने किसी कारण से उनके ऊपर में इल्जाम मत लगाओ, उनसे विरोध मत करो, अपनी जीविका का भार उन पर मत डालो। इतना तो भगवान ने शरीर हाथ पैर दिया है, बल्कि उससे भगवान की सेवा करो, वैष्णव की और गुरु की सेवा करो, गुरु के ऊपर में तुम हम ये क्या न बने, भार न बने, इस चीज को याद रखो। तो ये मानिषाद प्रतिष्ठम पहला चरण, तमगम शास्वती समाज जत क्रौंच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम, ये चार चरण हुए, चार चरण का श्लोक बना। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद किसको कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये त्रिष्टुप छंद है। इस तरह से बहुत प्रकार के छंद हैं, इसमें मंत्र वेदों के श्लोक को श्लोक नहीं कहते हैं, मंत्र कहते हैं। इसका गायन भी हो सकता है तरह तरह के स्वरों में, जैसे चौपाई का होता है तरह तरह के चौपाइयों में बहुत स्वर से, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी, अब दूसरे स्वर से भी तीसरे स्वर से, जय तितेधिकम जन्मना ब्रज श्रैति इंदिरा श्वास्वदत्रे दैत देशताम शिशुस्तावका स्वैधृता सव स्वांग विथिन, जुगलजीत चौपाई के रूप में वो भी अनुष्टुप छंद याद है, वाम बाहु कृता वाम कपोला बलगित भ्रूर धरार्पित बेन, चौपाई जैसे इसको जिस रूप में इसको गा सकते हो। तो इस प्रकार से हमारे लवकुश को राग रागनी में ऐसा सिखला दिया जैसे कृष्णदास जी अपने स्वर को बदल करके महामंत्र को पांच प्रकार से, दस प्रकार से, बीस प्रकार से गा सकते हैं, पांच घंटा लगातार गा सकते हैं विविध स्वर से। ऐसे लवकुश इसको तरह तरह से गायन करते थे, बिना अपराध के ही तुमने इस क्रंच पुरुष जोड़े में से पुरुष को तुमने मार डाला जो काम मोहित अवस्था में थे, तुमको कभी जीवन में शांति न मिले। जब कह दिया उनके मन में चिंता हुई, ओहो मैंने क्या कर डाला, मुझे तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। क्यों, ये तो मरा नहीं, शरीर तो इसका मट्टी का है, आत्मा इसका अलग है, आत्मा तो मरती नहीं और मिट्टी या मिट्टी से बनी हुई कोई चीज मरती नहीं, तो मरा कहां। गीता के अनुसार में अर्जुन को कृष्ण ने शिक्षा दी कि ये शरीर एक कपड़ा है, एक कपड़े के मरने से हटने से आत्मा नहीं मरती। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने से। तो हम ऋषि होकर के इस तत्व को जानने वाले और लाखों लोग आदमी मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और हमको इसके लिए शोक हुआ, ये तो ठीक नहीं हुआ। यदि सुखदेव गोस्वामी के सामने ये घटना होती तो सुखदेव क्या करते, वो देखते, देखते नहीं। कृष्ण के सामने में लाखों लोग मरे युद्ध में, कृष्ण को क्या हुआ, भीष्म पितामह को क्या हुआ, हुआ भीष्म पितामह को कुछ भी नहीं हुआ, राजा जनक के सामने होता उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्या कर डाला, ये शरीर के नष्ट होने से आत्मा का मैंने नष्ट होना स्वीकार कर लिया और हमारे हृदय में ऐसा आवेग तो निकल गया, ये क्यों निकला। चिंतित स महाप्राज्ञ, बहुत प्राज्ञ माने प्रज्ञ, ज्ञ माने जानने वाली, सब कुछ भगवान के राम नाम का बल से भूत भविष्यत वर्तमान के वो जानने वाले बन गए, त्रिकालज्ञ बन गए थे। त्रिकालज्ञ जान करके होने पर और उनको शोक आ गया, ये तो बड़े विचित्र बात है, उनको नहीं होना चाहिए। इसलिए महाज्ञानी महामानी ज्ञानी क्या तुम लोग सुनता नहीं, इधर उधर करता है, क्या बात हो गई। तो इस समय तो तुमसे जाकर के बातचीत कर लो, ये अभी तो मैं प्रवचन में बैठ गया, कहाँ है। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट। प्रज्ञान माने क्या, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान, ज्ञान माने क्या, किसी चीज का तत्व ज्ञान, विज्ञान अनुभूति सहित ज्ञान, प्रेमा भक्ति के सहित ज्ञान को प्रज्ञान कहते हैं। तो वैसी तरह से प्राज्ञ माने क्या, रामचंद्र जी की लीलाओं को उन्होंने सब कुछ देख, अभी देखेंगे राम नाम का कितना 7,000 तक राम 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 करके कहे हैं और सब उनकी सारी अनुभूतियां हो गई हैं और उसी का ये रामायण परिणाम है। ऐसे प्राज्ञ ऋषि जो थे सोचने लगे, परम बुद्धिमान एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार से बोले, ताप सुख से पीड़ित हुए, मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा वह 4 चरणों में आबद्ध है। और आशा साक्षर सब में है और इसे बिना पर गायन भी किया जा सकता है, अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप, श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप में, श्लोक माने क्या होता है, उत्तम श्लोक गुणानुवाद वर्णने, उत्तम श्लोक माने यहां पर श्लोक माने भी वही होता है जिसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, इसलिए उसको श्लोक कहते हैं। श्लोक और मंत्र प्राय बराबर है। अन्यथा होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की उत्तम बात सुनकर के उसके शिष्य भारद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उसका समर्थन करते हुए, हाँ आपका वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को भी शोर संतोष हुआ। फिर स्नान करके लौट गए चिंता करने, कितने में ब्रह्मा जी आए, ये उठ करके उनका अभिवादन किया, बोले आज तुम्हारे मुख से कोई श्लोक ऐसा निकला, क्यों निकला? उनका जी मुझे ये पता नहीं ये कैसे श्लोक बंद, चार चरण में मेरा ये निकल गया, मेरी भावना निकली, क्या ये मेरे द्वारा हुआ, मेरी प्रेरणा से। इस मैंने ये ब्रह्मा जी ने कहा और उनको कहा कि हमने इसलिए किया कि इसी में रामचरित्र की सारी गाथाओं को जो पूर्व ब्रह्म कथाओं का इन्हीं श्लोकों में वर्णन करना आदि से अंत तक। तो मैं तो जानता नहीं, नहीं जानता है तो ठीक है, एक बात करो, या नारद जी ने ही कहा, हमने देखा नहीं। और उन्होंने कहा जैसे तुम उनका ध्यान करके बैठ जाओ, भक्ति योगेन मनसि, जैसे नारद जी की कृपा से व्यास जी ने समाधि योग में कृष्ण के लीलाओं चरित्र एकदम बाल जन्म से लेकर के और अंतम तक दर्शन किया, जैसे सिनेमा में देखते हैं, उससे भी साक्षात रूप में मानो सब लीलाओं को दर्शन किया। उसी प्रकार से नारद जी की कृपा से और ब्रह्मा जी की कृपा से उन्होंने आदि से अंत तक उन्होंने सारी लीलाओं को देखा। मैंने कहा इसी श्लोकों में तुम इसको आबद्ध करके और इसका वर्णन करना, इसलिए वाल्मीकि रामायण में बस अनुष्टुप छंद केवल है और दूसरा कोई छंद नहीं, कोई छंद नहीं। श्रीमद् भागवत कैसा है, बाबा उसमें कितने जितने प्रकार के छंद हो सकते हैं सृष्टि, उन्होंने सृष्टि छंदों की सृष्टि उन्होंने की, सब प्रकार के छंदों की, उसको सब प्रकार से गायन किया जा सकता है, एक एक शब्दों के बहुत प्रकार से अर्थ हो सकते हैं, किंतु आदि कवि इन्हीं को माना जाता है। ये व्यास जी के जन्म से लाखों वर्ष पहले ये वाल्मीकि जी हुए हैं, इसलिए इनका यह काव्य आदि काव्य कहलाता है। ऐसे सरल रूप से लिखा है जो भगवान की भगवत्ता का जो ऐश्वर्य भगवान न पाए, नर्वत लीला सुंदर सरल सहज रूप में उन्होंने वर्णन किया। उनके वर्णन में उन्होंने नहीं कहा कि भगवान राम है, कहीं कहीं बड़ी मुश्किल से आ जाता है, भागवत में तो बहुत बार आ गया, एते चांस कलाप पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ओ भाग्यम ओ भाग्यम नंद प्रजोपजाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म निजंग्न लोके वत भूरि भागा लोकांकुनानम मुने अभियांति इत्यादि, बहुत जगह में हजारों जगहों में, किंतु उन्होंने ऐसा इसको सरल सहज रूप में वर्णन किया जो भगवत्ता का नहीं, किंतु उसका लक्षण जो घटता है किस पर, सब भगवत्ता पर उसका सारा लक्षण। तो इस तरह से उनको आदेश देकर के नारद जी चले गए और उन्होंने बैठ करके फिर समाधि लगाई और उसमें रामचरित्र सारा देखा और देख करके उसका लिखा उन्होंने लिपिबद्ध किया और देखा कि किसको किसको पढ़ाएं, और उसी समय बाय चांस जब पूरा समाप्त हो गया, थोड़ा सा बाकी रह गया था, उसी समय सीता जी उनके आश्रम में राम के द्वारा भेजी हुई वहां पर पहुंच गई। उनके लड़के भी कुछ दिनों में हुए और लड़के धीरे धीरे बड़े हुए। अब राम के लड़के कैसे होंगे, उनको इन्होंने शिक्षा दी। और यही सबसे पहला गायन हुआ कहां, पहले तो वाल्मीकि के आश्रम में रिहर्सल हुआ और तब रामचंद्र जी की सभा में यज्ञ सभा में उनका गायन हुआ, और गायन ऐसा हुआ कि सब लोग स्तंभित रह गए, ऐसा कोई नहीं था जो रोता नहीं प्रतिदिन। और अंत में जबकि रामचंद्र जी का वनवास, सीता का वनवास जब
तो सभी लोग विलाप करने लगे।
तो जिन विषयों का उन्होंने वर्णन किया इसको हम संक्षेप में आपको बतला रहे हैं। वे कुशों के आसन पर बैठे वाल्मीकि जी, विधवत आचमन किया, विधवत आचमन मैंने किया, आसन पर बैठे, आसन शुद्धि, भूत शुद्धि, आचमन किया। हम लोग आचमन ठीक से नहीं करते विधिवत, जैसा बतलाया गया है उसका अर्थ भी नहीं समझते, अर्थ समझ करके विधिवत उसका आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद में क्या करते हैं, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। नमः माने क्या, उन भी शरणागत होते हैं, ऐसा ही शरणागत हो, अपना बुद्धि विद्या वाक्य सब छोड़ो, छोड़ करके उन पर नमः और स्वाहा दोनों एक ही चीज है। अपना अहंकार, जड़ी अहंकार, मानसिक अहंकार सबको छोड़ करके मैं आपसे शरणागत होता हूं, ये नमः, विद्वत नमः। ये थे हम आनिक जो करते हैं वो भी ऐसे ऐसे कर लिया, बस हो गया आचमन, क्या हुआ कुछ नहीं। अरे पानी लेकर के करो, विधिवत करो, और उस समय में ओम नारायणाय नमः, नारायण का ध्यान करो। सब नारायण कौन है, नारायणों में भी परम मूल नारायण कृष्ण का ध्यान करो, नारायण। माधवाय नमः, केशवाय नमः, इसके बाद में गोविंदाय नमः, गोविंद का गोविंद है कौन, कृष्ण। ये सब का स्मरण करते हुए आत्मन करो विधिवत, उसमें चित्त से सब संसार की सारी चीजों को हटाओ और एकनिष्ठ चित्त हो, आत्मन के समय पानी के द्वारा सबको प्रक्षालन करके फेंक दो सारी चिंताओं को, और बैठ करके आत्मन करो विश्वास के साथ में, और तब गायत्री मंत्र विधिवत किस रूप में, त्रिष्टुप छंद के रूप में, उसके अर्थ के साथ में किसी भी मंत्र का आराध्य कौन है, उसे हमारा क्या संबंध है, उसमें कैसे शरणागति होगी, उसमें शरणागति और प्रपत्ति और न्यास इत्यादि, ये सब ये विधिवत होना चाहिए। हम लोग इसके लिए चेष्टा नहीं करते, बस बैठ गए, कभी वर्ष में कर लिया, कभी नहीं किया, कभी माला फेरा, कभी फेरा नहीं, माला फिरत जुग गयो, गयो न मन को फेर, क्या कर का मन का छाड़ कर, वो ठीक ही लिखा है, ठीक लिखा है। तो देखो तो मन का फेर ही नहीं गया, अभी हेर फेरी कर रहे हैं, अभी मन की शांति नहीं गई, अशांति नहीं गई, चंचलता नहीं, गुरु पर विश्वास, वैष्णव पर विश्वास नहीं, छिपाते हैं उनसे, मन अशांत रहता है। तो फिर गुरु गुरु में आने का तात्पर्य कारण क्या रहा, हमारा मन तो मैं सत्य एक दिन भी कभी अशांत नहीं हुआ, ऐसा कोई बात ही नहीं जो गुरु के प्रति हमारी थोड़ी सी अश्रद्धा हो, दिन पर दिन बढ़ती गई। विशेष करके आजकल और गुरु के चरणों में और अधिक श्रद्धा हो रही है, उनका ऋण में जन्म जन्म नहीं चुका, नित्य नए नए भाव आते हैं, ये सब उनकी करुणा है। जो कुछ हो रहा है सब मैं उनकी करुणा में देख रहा हूं, और आप लोग तो बहुत विद्वान हैं, हम तो विद्वान भी नहीं कुछ नहीं, इसलिए इस पर अच्छी तरह से देख करके मन चंचलता छोड़ करके पैसे पैसे पर मत विश्वास रखो। बहुत से लोग हैं हमारे साथ में रहते हैं किंतु हम पर भी जितना विश्वास नहीं उससे अधिक विश्वास पैसे पर चुरा करके इधर से उधर से उधर, तो क्या हमारे पर में इतना कहां विश्वास, भगवान के प्रति शरणागति है और फिर दूसरों पर विश्वास, तो मेरी शरणागति कहां हुई इसमें, कहा
इसलिए कहते हैं उन्होंने सारी लीलाओं को देखा, लीला के देखने का आचमन किया और समाधि के द्वारा योग धर्म, योग मैंने क्या, अपने मन को कृष्ण में लगाया, राम में लगाया और राम के चित्र का सोचने कहां से आ जाए हमारे हृदय में। इतने में सप्त शुद्धि हुई, सप्त शुद्धि मैंने क्या, वो लीलाएं सब धारा प्रवाह से उनके हृदय में आने लगी, धारा प्रवाह और सबको देखने लगे, मानो देख रहे हैं कैसे जन्म हो रहा है, कैसे उनका ये लीला है, बाल लीला कैसे और लीलाएं कैसे। उसी थोड़े ही समय में सूत्र के रूप में सारी लीलाओं का, हो सकता है कि दो चार घंटे या पांच घंटा लगा। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक सेकंड के अंतर, दो मिनट के अंतर्गत में अनिक समाप्त कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारा 15-20 मिनट में, आधा घंटा में भी नहीं होता। कुछ लोग इतनी तेजी से हरे कृष्ण राम 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 हरे, इतनी तेजी से करते हैं कि मैं प्रैक्टिस करके भी उतना नहीं। अरे ऐसे तो करो जैसे कुएं में गिर रहे हो, भगवान को पुकार रहे हो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ऐसा तंत्र तो करो। क्वांटिटी पर मत जाओ, क्वालिटी में आओ। हमने देखा जो लोगों को देख करके आश्चर्यचकित होता है, हम जब एक राउंड करते हैं उनका देखते हैं कि 10 राउंड पूरा खत्म, सर हाथ के उनकी ये सब गिनती होते चले जाते। हम कहे बड़े सौभाग्यवान हैं जो इतना जल्दी कर लेते हैं। उन्होंने देखा क्या, पहले चारों भाइयों का कैसे जन्म हुआ, ठीक से बैठो सब करके, ऐसा समत मत करो, ठीक से अच्छी तरह से बैठो। हमारी नजर चारों तरफ है, जो दीवार पर ऐसे किए हैं उस पर ही नजर है, और को ऐसे कर रहे हैं उस पर ही नजर है, चारों तरफ में हमारी नजर है,
भी रहा होगा।
हाँ तो ये सब अच्छी तरह से बैठ करके सुनिए। उन्होंने देखा कैसे पुत्रेष्टि यज्ञ हुई, उसके बाद में यथा समय पर आज के दिन में रामनवमी के दिन में राम लक्ष्मण भर शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उनका हंसना, उनका बोलना, उनका चलना, राज्यपालन, जितनी भी चेष्टाएं हुई मर्च ने जोग बल से सभी को साक्षात्कार किया। अपश्यत पुरुषम पूर्ण, अपनी आंखों से उन्होंने अपश्यत पुरुषम पूर्ण, पुरुष पूर्ण जो कृष्ण हैं, वो कैसे कृष्ण पूर्ण होंगे, उनके सारे परिकर होंगे, उनकी सारी शक्तियां होंगी, उनकी सारी लीलाएं होंगी, तब वो अपश्यत पुरुषम पूर्ण। ऐसे उन्होंने सबको साक्षात्कार किया। भजन करते हैं, भजन करते हैं गायत्री का जो मंत्र करते हैं, तो गायत्री का जो तात्पर्य है प्रचोदयात, प्रकृष्ट रूप से हमारे हृदय में उदित हों, ये तो तात्पर्य है उसका। तो हुआ कुछ इतने दिनों में, उसके लिए कुछ चेष्टा की, प्रार्थना हुई, उसके लिए कुछ बिरह आया। गोपीजन वल्लभाय स्वाहा और कामदेव में प्रचोदयात, वो हमारे हृदय में प्रकट हो, गौरा प्रचोदयात हमारे हृदय में आए, ये भावना कभी हुई नहीं। उसके लिए हृदय में आरती प्रार्थना तो कैसे प्रकट हो। इसलिए गायत्री मंत्र इत्यादि जो हमारे 10 या 9 मंत्र हैं, उनको करते समय यदि अनुभूति अभी तक नहीं हुई और उसके लिए हमारी कोई दृढ़ व्यथा नहीं है, तो ये बेकार का ये सब है, विश्वास नहीं होता कि वो हमारे सामने प्रकट होंगे और उनकी कृपा हमारे सामने उतरेगी, हमको विश्वास नहीं होता। तो फिर क्या होगा। इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके चित्त को शांत करके अनुभव करो। त्रिसंध्या इसलिए कहा गया कि दिन भर इधर उधर रहेगा, 3 शाम को करते 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 फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लगातार गोप कुमार की भांति से वो जो गोपाल मंत्र था कब करता था, वो यहां तक कि स्वर्ग कहां तक, वैकुंठ के नीचे तक कभी छोड़ा नहीं, और उसके सामने गोपाल प्रकट हो जाते कभी। ऐसा होता है? नहीं होता तो उसके लिए कुछ किया? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने काम गायत्री को समझने के लिए, जब नहीं समझ में आया तो राधा कुंड में खुद करके प्राण को छोड़ देंगे। ये समझ में नहीं आता जो इसका आधार सर कौन सा है, हम लोगों को कभी उदित ही नहीं होता ये, उसके चीज को समझने की लालसा नहीं होती। इसलिए मंत्र भी कहते हैं कि रहो दूर, अभी हजार जन्मों में थोड़ी सी जब होगी हरि कथा सुनते सुनते जब ये भावना आगी तब प्रकट होंगे। मंत्र माने भगवान का स्वरूप है, वो प्रकटित होगा हृदय में, केवल ऐसे मंत्र करने के लिए नहीं है, उसकी अनुभूति होगी। उन्होंने देखा सत प्रज्ञा रामचंद्र जी, सत प्रतिज्ञा रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ में विचरण करते हुए जो जो लीलाएं उन्होंने की, चित्रकूट से आरंभ कर और चित्रकूट के बाद में कहां चले गए, गोदावरी के तट पर, अरे कौन सा, अरे जहां पर सीता जी का हरण हुआ, पंचवटी दंडकारण, और उसके बाद में सीता का हरण, और उसके बाद में किष्किंधा गमन, हनुमान जी का सीता जी की चोरी, और रावण का उनको लेकर के चोरी करके चला जाना, फिर ये चारों तरफ से पागल होकर के घूम रहे हैं, फिर हनुमान जी जाकर के पता लगाया, और इसके बाद सेनाओं के साथ में लंका पर उन्होंने आक्रमण किया, इत्यादि सबको जो जैसी थी वो सब उनके सामने साक्षात प्रकट हुई। तथा पश्चात धर्मात्मा सर्वम योगमास्तिता पूरा जब तत्व निवृत्तम पाणाव माम मालकम जथा, जो काशय करके भक्ति, जो काशय करके धर्मात्मा मुनि ने पूर्व काल में जो घटना है, पूर्व काल मैंने कब, ये तो उन्होंने कहा गया रामचंद्र जी के समय में, तब इसका मतलब क्या, पहले कल्प में, इन कथाओं में बहुत सी समता रहती है, और विशेष करके अश्रु मारण में कुछ अंतर हो सकता है नैमित्तिक लीलाओं में, किंतु नित्य लीलाएं उसमें जो होते हैं वो एक ही होती हैं। तो इनमें इनकी जो बहुत सी नित्य लीलाएं उनको उसी रूप में देखा जो पहले कल्प में ये घटनाएं हुई थी, किंतु इधर में जो पढ़ाया लौकुश को उस समय राम की लीला भी यहां पर चल रही थी, सबको वहां हाथ रखे आवने की भांति प्रत्यक्ष देखा। हम अभिभजन करते करते समाधिस्थ हो जाएंगे, रघुनाथ और रूप गोस्वामी की भांति देखेंगे ये श्रीमती जी आ गई, कृष्ण से उनका मिलन हो रहा है, कैसे उनकी लीलाएं हो रही हैं। तब तो उनको देख करके उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा अपिवत सुरकांते प्रौढ़ी सौभाग्य दृप्तक प्रणय धित्त सुखो उन्माद मत्तोर गर्भई दर्गदित मुकुंदा कल्पिता कल्प तल्पा क्षणमपि मम राधे नेत्रमान हे श्रीमती राधिके जी। अपिवत सुरकांते प्रौढ़ी सौभाग्य, उस समय श्रीमती राधिका जी एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई जो क्या कहते हैं स्वाधीन भक्तिका के रूप में आई, और कृष्ण उनको मना रहे हैं, और ये गोपियां मिलकर के ताली बजा करके कृष्ण को की हंसी उड़ा रही हैं। ऐसा कब होगा जो लीलाएं हम देखेंगे, ऐसी राधिका जी क्षण भाग भी हमारे ऊपर में कृपा करें, उनके एक एक लीला को दर्शन कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं, किसी स्तर के रूप गोस्वामी जी उनका वर्णन करते हैं। लीना निकुंज भवती कुहर चित्रैव सूचितवती सुचिराक्षिणाहम भुग्ना ब्रुवांग्न रचयेत् मिषास्तासम अग्रे बजंद तनयस्य कदानुनिश। हे श्रीमती राधिका जी, कभी कृष्ण के साथ में लीला करते करते सखियों के समय आप किसी कुंज में चली जाएंगी, चली जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ चली जा रही हैं, और उस समय में आप छिप गई और कृष्ण पूछते पूछते आपके उस कुंज में घुस गए, और उस समय में निकल करके आप आई और हमारे प्रति, हमारे प्रति माने मैं रूप मंजरी और रूप गोस्वामी के रूप में बैठे हुए सामाधी सोकर के देख रहे हैं और उस समय कह रहे हैं जैसे आप ऐसे आकर के हमको ऐसे शासन कर रहे हैं, तुमने क्यों बतलाया कि मैं इसमें सूचित बती क्यों बतलाया? अरे मैंने हमारे ऊपर में आप आंखें ऐसे निकाल रही हैं, मैंने तो बतलाया नहीं। अरे चित्रा जी बतला दिया, हमने तो बतलाया नहीं। तब फिर वो शांत हो, ऐसी राधिका जी हमारे ऊपर में कब कृपा करेंगी? इसको समाधि से देख रहे हैं। आप लोग भजन में ये सब देखने की चेष्टा की और नथी नहीं तो दूर हो रहे हैं। अभी गुरु पर वैष्णव पर विश्वास नहीं है, उनके आदेशों पर हम चल नहीं रहे। जब गुरु के ऊपर में ही इतना विश्वास नहीं है, उनसे महीनों तक बात नहीं होती, अनुगत ही नहीं जहां है, फिर क्या होगा? गुरु को मत बुद्धि मत करो, किंतु हम मत बुद्धि करते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर कैसे होगा? विश्वास नहीं। और गुरु भी वैसा होना चाहिए ना, गुरु ऐसा नहीं रहे तो नीम के पेड़ को हम आम मान लेंगे तो होगा, वो भी नहीं होगा। तो गुरु भी ऐसा हो, शिष्य भी ऐसा, किंतु कुछ विश्वास ऐसा होता है कि भगवान ऐसे सरल सीधे व्यक्ति को सदगुरु के पास से ही पहुंचाते हैं। यदि वो सरल सीधा रहे, यदि इसमें डुप्लीसिटी इत्यादि है तब तो वो नहीं पहुंचेगा, तब तो इस्कॉन के गुरुओं के पास में आपको पहुंचा देंगे और 10 बार गुरु बदल लेंगे।